ओम शांति। हमारे सामने आदरणीय लाज दीदी जी हैं, हम सभी उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी, लगभग 40 वर्ष पहले 1974 में इस ईश्वरीय यज्ञ से जुड़ी, इस ईश्वरीय ज्ञान में आई, परमात्मा को पहचाना, उनके दिव्य ज्ञान को जीवन में धारण किया और 1976 से अपने आप को पूर्ण रुचि से इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। आपका पूरा परिवार ज्ञान में है और सिरसा से आपने ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया है। आपने शुरू में सिरसा डबवाली में रहकर सेवाएं दी और प्रेजेंट टाइम में आप चंडीगढ़ धनास में आप संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। 1990 से आप धनास में ही रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज विशेष हमारे बीच में इस ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि पुरुषार्थ हमारा कभी ऊपर होता है, कभी बहुत अच्छा, कभी मीडियम, कभी लो, तो कैसे अपने पुरुषार्थ में एक रस अवस्था बना के हम रखें, उसकी क्या विधि है, इस विषय को क्लियर करेंगे आदरणीय लाज दीदी जी।
ओम शांति। हम सभी संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं इस संगम युग के मौजों में मौज मना रहे हैं। संगम युग में हम बाबा के बच्चे इस समय जितना कमाई करना चाहें कर सकते हैं। इस युग को वरदान है पूरे कल्प के लिए, पूरे 84 जन्मों के लिए अपनी कमाई करने का। इस संगम युग के अंदर विशेष जिस मास के अंदर हम हैं, जनवरी मास, इसको भी संगम युग के अंदर विशेष वरदान है। ये अव्यक्ति मास, इसके अंदर इस मास में हम जो भी संकल्प लेते हैं वो हमारा सहज ही पूर्ण होता है। बाबा ने भी इस बार 31 दिसंबर की वाणी में कहा, आप कोई भी पुरुषार्थी अगर दृढ़ संकल्प करेगा उसको बाबा पूर्ण करने का वरदान सहज के रूप में देंगे। तो इसको हमने प्रैक्टिकल करके देखना होता है अपने जीवन के अंदर। हम जिन कमियों कमजोरियों को बहुत समय से नहीं निकाल पा रहे हैं अपने जीवन में से, अगर इस मास के अंदर बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा ने कहा है, मैं उन दृढ़ संकल्पधारियों को, पुरुषार्थियों को मदद करूंगा, तो ये मैंने इस मास के अंदर मैंने अपने प्रति भी विशेष अनुभव किया। मेरे अंदर एक छोटी सी कमी जो मेरे पुरुषार्थ के अंदर बहुत विघ्न रूप थी, मैंने जिस दिन बाबा ने जिस समय बोला कि दृढ़ संकल्प करने वाले पुरुषार्थियों को विशेष मदद रहेगी पूर्ण करने की, तो उसी दिन से, उसी समय जैसे ही बाबा ने बोला तो मैंने संकल्प लिया। तो उस दिन से लेके आज तक वो कमी मेरे को याद भी नहीं आई। तो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, बाबा जब जब जिस जिस बात के लिए कहते हैं उसको उसी समय हम प्रैक्टिकल रूप दे दें तो वो हमें वरदान के रूप में हो जाती है, सहज हो जाती है। कोई भी बाबा की बात को जब सुनते हैं उसी समय ही पूर्ण करने का हम लक्ष्य ले लें, बाबा बहुत ही हमारे पर खुश होते हैं, वरदान देते हैं, सहज कर देते हैं। तो संगम युग पर बाबा हमें बहुत से खजाने देते हैं। सबसे बड़ा है ज्ञान का खजाना। दुनिया वाले स्थूल रूप में किसी के पास कितना भी खजाना हो, अगर वो यूज ना करे तो उसे खुशी नहीं होती है। ऐसे में बाबा ने खजाने तो बहुत दिए हैं, हम समय प्रति समय उसे कितना यूज करते हैं। जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, हम उस परिस्थिति में तो नहीं खो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया, ये मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है, ऐसे संकल्प ना आए। उस समय हम ज्ञान को यूज करें। बाबा ने जो कहा है, बच्चे तुम अच्छा करते चलो, अच्छे का फल अच्छा ही मिलता है। आप कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके रिटर्न में आपको अच्छा नहीं मिलता है, तो आप कभी ये मत सोचें कि मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने किसी के लिए नहीं किया, उस व्यक्ति के लिए नहीं किया, मैंने किया अपने बाबा के लिए, बाबा की श्रीमत अनुसार किया है। किसी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, जब उसका रिटर्न लेने के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति उसके बदले में मेरे साथ अच्छा करेगा, इसलिए मैंने अच्छा किया, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते रहना चाहिए, पुण्य का खाता कहते हैं। जब कोई किसी के पास कुछ जमा होता है तो मुसीबत के समय काम आता है। हम भी अपने पुण्य का खाता सदा जमा करते रहें, और जब कोई परिस्थिति आएगी तो हमारे सामने वो पुण्य का खाता हमारी परिस्थिति को सहज पार करा देगा। तो ये कमाई करने का समय है, जितना हम कमाई करना चाहें कर सकते हैं। सीजन होता है, जैसे कमाई का सीजन हो, अगर कोई उसी समय वो ध्यान ना दे, लापरवाही कर जाए, जैसे बीज बोने का समय हो, उस समय बीज ना बोया जाए और समय बीत जाने के बाद बीज बोया जाए, तो उसको जो चाहिए हवा पानी मौसम वो उसको नहीं मिल सकेगा, वो फलीभूत नहीं होगा। इसी तरह से ये संगम युग, ये समय जो है, ये एक पुण्य का या कमाई का कहें, बीज बोने का समय है। इसमें हम जितना बोना चाहें बो सकते हैं, और ये धन जो हमें मिल रहा है बाबा से, ज्ञान का खजाना, ज्ञान का धन, ये हमें बहुत ही खुशी देता है, आनंद देता है। स्थूल धन के द्वारा स्थूल वस्तुओं को तो खरीदा जा सकता है, लेकिन मन की जो अचल स्थिति है, एक रस स्थिति, जब कोई परिस्थिति आ जाती है उसमें वो धन काम नहीं आता है। चाहे कोई कितना भी करोड़पति हो, उसका मन डावाडोल हो जाता है, समस्या के अंदर परेशान हो जाता है, हलचल में आ जाता है। कई बार ऐसे परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको कई प्रकार के रोग भी लग जाते हैं, परिस्थितियों के वश होकर के मन कमजोर हो जाता है। तो ज्ञान धन जब होता है, ये ज्ञान धन ही मदद करता है, क्योंकि बाबा ने कहा है जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बाबा ने मुझे बताया कि जो कुछ हो रहा है इसमें कल्याण समाया हुआ है, जो बीता सो बीता। इन बातों का हम चिंतन करते हैं, जो कुछ होता है यूं ही नहीं होता है, हमारे कर्मों के, पिछले कर्मों के ही हिसाब किताब के कारण होता है, ये जो होता है ड्रामा अनुसार होता है। इन बातों का हम चिंतन करते हैं, ड्रामा के ज्ञान का चिंतन करते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी हमें ड्रामा की ढाल दे दी है, हम कभी भी किसी भी परिस्थिति के अंदर उलझ नहीं सकते हैं, घबरा नहीं सकते हैं, और हम सबके साथ एक रस स्थिति बनाने के लिए हमें दूसरों के साथ इजी होकर के रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार को इजी बना लेते हैं, मिलनसार बना लेते हैं, तो हम दूसरों की दुआएं ले सकते हैं, नहीं तो हम दूसरों की बातों को, छोटी छोटी बातों को देखते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम अपने आप को देखो, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा अपने कर्मानुसार पार्ट सही बजा रही है। तुम आत्माएं अपने कर्मों को देख करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते चलो। हर समय ये सोचो कि मैं आत्मा वही संकल्प करूं जिससे मेरे को खुशी मिले, मैं ऐसे कोई नेगेटिव संकल्प न करूं जिससे मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो जाए। देखो किन किन बातों के कारण, किन किन चिंतन से मेरी स्थिति डावाडोल होती है, मैं क्या सोचती हूँ, क्या मेरा चिंतन चलता है, नेगेटिव थॉट चलते हैं जिसके कारण मेरी स्थिति डावाडोल हो जाती है। ये जब हम चिंतन करेंगे, चेक करेंगे अपने आप को, तो चेक करने से क्या होता है, उन बातों पर हम ध्यान भी देते हैं। क्यों होता है, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों बोला, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, इन बातों के चिंतन से क्या होता है, हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। ये सब बातें बाबा हम बच्चों को हर वाणी के अंदर समझाते हैं कि फॉलो फादर करो। बाबा ने कैसे किया, ब्रह्मा बाबा का हम सारा जीवन पढ़ते हैं, जीवन कहानी पढ़ते हैं। मैंने अपने जीवन जो समर्पित किया, वो पहली किताब मैंने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी थी कि ब्रह्मा बाबा कैसे अपने जीवन के अंदर उन्होंने नष्ट मोह बने, कितना त्याग तप त्याग किया, कैसे परिस्थितियां आई, वो निश्चय बुद्धि वे जनती रहे। इन बातों को देख करके मेरे जीवन के अंदर भी ये प्रेरणा आई कि मैं भी ऐसे ही अपना जीवन बनाऊं और ये रूहानी पढ़ाई जो है ये मेरी चलती रहे। कि मुझे बहुत शौक था कि पढ़ाई जो है पूरा जीवन होनी चाहिए। लौकिक पढ़ाई तो पूरा जीवन नहीं हो सकती है, लेकिन जब ये हमें ज्ञान की ये रूहानी पढ़ाई मिली, जब परिचय मिला, तो मेरे को लगा ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, ये जब तक जिएंगे तब तक ये पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। और बाबा हम बच्चों को वो जिम्मेवारियां देता है, जिम्मेवारियों के अंदर बाबा ने जो सेवा की जिम्मेवारियां दी हैं, उनको अपना कार्य बाबा के साथ मिलकर के मुझे ये कार्य करना है। बाबा मेरा साथी है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात होती है, उस बात के चिंतन में ना जाकर के बाबा जो कहता है वो चिंतन करना है। जितना हम बिजी रहते हैं उतना इजी भी रहते हैं। कई अपने आप को सेवा ज्यादा होकर के जब ज्यादा सेवा देखते हैं तो ये सोचते हैं कि बहुत भारी सेवा मिल गई है, मेरे को ये ड्यूटी मिल गई है, क्या करूं। बाबा कहते जितना आप निर्संकल्प होकर के ये मेरा कार्य है, मैंने ही करना है, तो बहुत ही बाबा का बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और हमें दूसरों के साथ मिलकर के रहना, स्वभाव संस्कार मिला करके रहना है। अब ऐसा नहीं है कि कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे का स्वभाव मेरे जैसा हो तो मैं संतुष्ट रहूं, लेकिन नहीं। बाबा कहते सबके स्वभाव अलग अलग रहेंगे, संस्कार अलग अलग रहेंगे, अलग अलग होते हुए भी हम एक होकर के रहें। जैसे संतरा होता है वो बाहर से एक होता है, अंदर से उसकी फाड़ी अलग अलग होती है। हम सबके एक जैसे संस्कार हो जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबका पार्ट एक जैसा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सबका पुरुषार्थ भी अपना अपना है, पद भी अपना अपना है। अगर सबका पुरुषार्थ, सबके संस्कार एक जैसे हो जाएं, तो सारे एक जैसा ही पद पा लेंगे। लेकिन सबके संस्कार स्वभाव अलग अलग होते हुए भी हम सबके साथ मिलकर रह सकें, ये कला हमने बाबा ने सिखाई हमें कि सबको देखते हुए जब किसी के साथ रहते हैं तो उनकी कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, देखना है कि ये बाबा के द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं, सब महान आत्माएं हैं, बाबा की सिलेक्टेड आत्माएं हैं, इनके अंदर सब विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखना है। और हमें अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई परिस्थिति आ जाए तो घबराना नहीं है। बाबा कहते मैं साथी हूँ, जो जो बाबा ने बातें की है मौके पर याद आनी चाहिए। बाबा तो आप मुझे साथी बनाएंगे तो मैं आपके साथ हूँ सदा। बाबा हमारी हर समय मदद करता है। बाबा का तो बाबा से हम सदा भक्ति में तो मांगते ही आए हैं, लेकिन बाबा ये कहता है, बाबा भी तो हमारे से कुछ चाहता है ना। भक्ति में तो भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो, लेकिन बाबा क्या कहता है, अभी मैंने अपने जीवन का अंदर किया कि भगवान से मांगना नहीं है, लेकिन भगवान हमारे से क्या चाहता है, वो हमारे से क्या चाहता है, ये मुझे देखना है कि बाबा क्या चाहता है। और बाबा हमारे से ये चाहता है कि मेरे बच्चे व्यर्थ से मुक्त रहें, कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए, शक्तिशाली बनकर के रहें। बाबा हमें शक्तिशाली बना रहे हैं, हम अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें। अपने आप को जब हम कमजोर समझ लेते हैं तो हमारे अंदर हीन भावना आती है। जब समझते हैं कि हम तो महान आत्माएं हैं, बाबा की चुनी हुई आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, तो हमारी कमी कमजोरियां बाबा अपने आप ले लेते हैं। और कभी भी बाबा जो भी हमें सेवा मिलती है, जिस तरह की सेवा मिलती है, हम उसे खुशी खुशी करते रहें, बाबा के आज्ञाकारी वफादार बच्चे बनकर के रहें। बाबा जो हमें खजाने दे रहा है, शक्तियां दे रहा है, वो हम दूसरों को भी दान देते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कई परिस्थितियां भी आती हैं, तो बाबा कहते हैं उन परिस्थितियों को पार करने के लिए हमेशा अपने आप को साक्षी होकर के देखो। जितना आप साक्षी स्थिति में रहेंगे उतना आपकी स्थिति श्रेष्ठ बनती रहेगी। बाबा हमारा साथी है, साक्षी स्थिति से ही बाबा साथी बनते हैं। बाबा कहते हैं आप जब भी मुझे याद करो तो मैं आपके साथ हूँ। इस संगम युग पर हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं, ब्राह्मणों की सेवा करने का हमें चांस मिलता है। भक्ति के अंदर कहते हैं कि एक ब्राह्मण की सेवा करने से कितना पुण्य होता है। जब मधुबन में आकर के हम सेवा का चांस लेते हैं तो हमें अनेकों की आशीर्वाद मिलती है। और हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कभी भी हम अच्छा कार्य करते हैं, उसके अंदर हमें कभी भी अपनी सेवा का अभिमान ना आए। सूक्ष्म अभिमान आने से क्या होता है, हमारे अंदर के जो बाबा से मिली हुई शक्तियां हैं, हम वो तो सेवा तो करते रहते हैं, अपनी शक्तियां बढ़ाते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कई बार खाली फील करते हैं। सब कुछ करते हैं कि हम क्लास भी करते हैं, योग भी करते हैं, जो हमें सेवा मिलती है वो सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को खाली अनुभव क्यों करते हैं। उसका ये कारण होता है, अपने अंदर कारण ढूंढना चाहिए कि सेवा करते हुए मेरे को कहीं मान शान की इच्छा तो नहीं है, कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो, ऐसा तो नहीं आता है। अगर सूक्ष्म में ये बातें मेरे अंदर आती रहती हैं तो मेरी सेवा का जो शक्ति जो मैं बल मिलता है, नहीं तो सेवा तो एक बहुत खुशी देती है, आनंद देती है। सेवा करने के बाद भी अगर खुशी नहीं है, जीवन के अंदर आनंद नहीं है, वो संतुष्टता नहीं है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं हम जो प्राप्त कर रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर छेद है झोली के अंदर। उस छेद से जो मेरा किया हुआ पुण्य है वो साथ साथ खत्म होता जा रहा है। तो मेरा पुण्य जमा होता रहे, वो मेरे को साथ ही साथ, बाबा ये कहते नहीं है कि जो हम सेवा करेंगे उसका भविष्य ही फल नहीं होगा, लेकिन वर्तमान समय भी हमें यहाँ पर ही खुशी, आनंद, संतोष, ये बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। अगर नहीं होती है तो इसका कारण कहीं ना कहीं कमी है। कमी क्या है, सूक्ष्म अभिमान है। बाबा द्वारा मिली हुई जो हमें गुण है, शक्तियां हैं, कला है, कोई मेरी अच्छी बुद्धि है, प्लानिंग बुद्धि है, कोई भी गुण है, कला है, अगर उसका अभिमान कर लेते हैं तो क्या होता है कि मेरे को जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, खुशी की, संतुष्टता की, वो भी नहीं होती है। और धीरे धीरे जो मेरी कलाएं होती हैं, जो गुण होते हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ हम उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं किसी को हम सुख दे रहे हैं, कहीं दुख तो नहीं ले रहे हैं, सुख दे रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम दुख ले रहे हैं कोई हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता तो हम उसका दुख ले लेते हैं, तो क्या होता है कि उससे भी हमारी जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाती हैं, जो हमने जमा की होती हैं शक्तियां। और बाबा कहते हैं जो आपको प्राप्त हुआ है उसका भी अभिमान ना आए, तभी हमारी स्थिति अच्छी रह सकती है। नहीं तो जो हम अच्छा कर्म करते हैं उसके रिटर्न में हमें जो मिलता है फल, उसका भी अभिमान ना आ जाए। अगर उसका भी अभिमान आ गया तो भी क्या होता है, हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। फिर हमें लगता है इतने सालों से हम इतनी अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, ज्ञान योग भी कर रहे हैं, तन से सेवा भी कर रहे हैं, मन से सेवा भी कर रहे हैं, धन से सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने का मेरा लक्ष्य क्या है? कहीं मेरे अपना नाम कमाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं कि मेरा नाम होगा, मेरा शान होगी, मेरी सारे वाह वाह करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है? अगर ये सूक्ष्म में आ रहा है तो मेरी की सेवा सफल नहीं होती है। और जो सेवा मेरे को आनंद देना चाहिए जिस सेवा ने, उस सेवा से मुझे आनंद नहीं मिलता है, खुशी नहीं मिलती है, संतोष नहीं मिलता है, अपने आप को खाली खाली अनुभव करते रहते हैं। तो हम सदा भरपूरता का अनुभव करें और हम सदा ही खुश रहें, उसके लिए अपना व्यवहार भी हमें सबके साथ अच्छा रखना है। व्यवहार अच्छा रखना माना किसी की भी कोई एक्टिविटी हमें ठीक नहीं लगती है उसके बारे में हमें चिंतन ना चले, बाबा की दी हुई ज्ञान की बातें याद आए कि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, कभी की किसी के एक्ट की तरफ ध्यान ना जाए। अगर हम दूसरों के एक्ट की तरफ ध्यान जाएंगे जो मेरी एक्ट अपनी है वो भी खराब हो जाएगी। जब कैसे कोई पार्ट प्ले कर रहा होता है अगर वो दूसरों को देखने लग जाए तो उसके पार्ट में भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, वो अपने पार्ट से ठीक करने में से कहीं ना कहीं चूक जाता है। तो हम भी बाबा के बच्चे जो दूसरों के पार्ट को देखते हैं हम अपना पार्ट सही प्ले नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सब आत्मे विश्व की स्टेज पर हैं, सारे विश्व की आत्माएं मुझ आत्मा को देख रही हैं, मुझ आत्मा ने जो भी कर्म करने हैं वो बाबा की श्रीमत अनुसार करने हैं। मेरी कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो दूसरों को भी व्यर्थ संकल्प चले। अगर कहीं मेरी एक्टिविटी सही नहीं होती है, दूसरों के अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसका भी प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ता है। कई बार आत्मा सोचती है कि मेरे अंदर कोई ऐसा सोच नहीं चल रही, कोई मैंने ऐसा कर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे को भारीपन महसूस हो रहा है, बोझ महसूस हो रहा है। उसमें क्या होता है, कई कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिसे दूसरों को देख करके नेगेटिव थॉट चलते हैं, उससे भी आत्मा भारी बोझिल हो जाती है। तो अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, हर तरीके से अपने आप को बाबा की श्रीमत अनुसार ढालना है, अपने पुरुषार्थ के अंदर अपनी चेकिंग करते रहना है, मेरे अंदर कहाँ कहाँ किस किस बात में कहाँ कहाँ पुरुषार्थ के अंदर विघ्न आता है। छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर जब हम अवज्ञा कर लेते हैं उसका भी बोझ हमारे ऊपर आता है, जिससे हमारी स्थिति एक रस नहीं रहती है। जैसे पहले पहले बाबा की आज्ञा है, बच्चे आप अमृत वेले उठो, उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करो, हम करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी लगता तो है छोटी सी हम श्रीमत का उल्लंघन किया, लेकिन इसका भी बोझ हम आत्मों पर आता है अवज्ञा करने का। फिर दूसरी श्रीमत क्लास टाइम पर आना, क्लास करना, इससे भी होता है कि हम जितने भी कर्म करते हैं हर कर्म का अच्छा या बुरा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। हमें देख करके औरों को अगर अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं तो हम आत्मा में दुआओं का खाता बढ़ता जाता है। अगर मेरे कर्म ऐसे हैं दूसरों को देख करके नेगेटिव थॉट चलते हैं तो मैं आत्मा के अंदर बोझ बढ़ जाता है और मैं आत्मा धीरे धीरे अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती हूँ, खाली महसूस करने लगती हूँ। लगता है कि बाबा जी से कहते बच्चे आप दूसरी आत्माओं को शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, आप किसी के लिए भी अच्छा करते हैं ये ना सोचो को व्यक्ति भी मेरे लिए अच्छा करे, ये सोच करके नहीं करो कभी भी। मेरे लिए वो अच्छा करेगा। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा किया, हर तरह से मैंने उसे सहयोग दिया, उस व्यक्ति ने मुझे टाइम पर सहयोग नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। मैंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया, मैंने बाबा की श्रीमत अनुसार अपने प्यारे बाबा को, बाबा की बात को माना है, बाबा की शिक्षा को धारण किया है। मेरा जो अच्छा होगा, जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने अच्छा किया उसी के द्वारा ही मेरा अच्छा हो, ऐसा नहीं। बाबा किसी के द्वारा मेरा अच्छा ही कराएगा, मेरा कभी बुरा नहीं हो सकता है। और बाबा कहते, करते जाओ, भला करते जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, कभी भी अच्छा करके सूक्ष्म में उसका अंदर, मन के अंदर चिंतन भी ना चले कि मैंने अच्छा किया। अच्छा करना मेरा एक स्वभाव बन जाए, नेचर बन जाए, मेरी नेचर में आ जाए कि मैंने अच्छे कर्म करने हैं इन, और मेरे को वैसा व्यवहार करना है जैसा हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि मेरी कोई गलानी करता है, मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता है, इसी तरीके से हम भी दूसरों के लिए कभी भी किसी की नेगेटिव बातें ना करें। सोचे जो मुझे नहीं अच्छा लगता, अगर मैं दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करूंगी उसको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये देखो मुझे क्या क्या नहीं अच्छा लगता है। ये पुरुषार्थ करना सहज है, अपनी स्थिति एक रस बनाने के लिए कि दूसरों की मुझे आशीर्वाद मिलती रहे, उसके लिए मुझे अपने आप को देखना है कि मेरे को क्या क्या नहीं अच्छा लगता। मुझे कोई कुछ उल्टा बोलता है वो अच्छा नहीं लगता है, मेरी कोई गलानी करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए मुझे भी ऐसा करना है कि मैं भी किसी की गलानी ना करूं। जैसे मुझे दुख होता है ऐसे दूसरों को भी दुख होता है। पुरुषार्थ करना सहज है, और नहीं समझ आती बाबा की लंबी चौड़ी बातें तो अपने आप से तुलना कर लो कि मुझे क्या क्या नहीं अच्छा लगता है। ऐसा व्यवहार मैं दूसरों से भी ना करूं जो मैं दूसरा कोई मेरे साथ अच्छा नहीं करता, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं अगर ऐसा किसी के साथ व्यवहार करूंगी या करूंगा उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत सहज तरीका है। और बाबा इस मास में तो विशेष ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का बहुत ही, बाबा ने कहा कि अगर आगे बढ़ना है उसके लिए क्या करना है, एक ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा के जीवन के बारे में पढ़ते सुनते हैं, लगता है ब्रह्मा बाबा कभी भी मन में, जैसे कई अज्ञानी लोग पूछते हैं कि अजय ब्रह्मा ही आपका नारायण बनेगा। मैंने जब पहले ही ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी थी, पहले दिन ही मेरे को निश्चय हो गया था कि हाँ हमारे ब्रह्मा बाबा ही सचमुच नारायण बनेंगे, क्योंकि उनके जीवन की जो विशेषताएं, जो उनकी नष्टमय स्थिति, जो त्याग तपस्या जो उनके जीवन में थी, वो देख करके लगता है कि सचमुच बनेंगे ही बनेंगे, इसमें संकल्प भी नहीं आ सकता है। ब्रह्मा बाबा की नष्टमय स्थिति वो हम सभी जानते हैं, त्याग जानते हैं, तपस्या सेवा जानते हैं, कि कैसे उन्होंने अपनी युगल और बेटी को भी अपने साथ नहीं रखा और सेवा के लिए बाहर भेजा। तो कितना बड़ा जो सुख सुविधाएं सभी भाई बहनों को दी वही अपने लौकिक बच्चों को दी। कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी स्थिति, नष्टमय स्थिति, कितना बड़ा त्याग, एक लौकिकपन का भान नहीं, इतना बड़ा त्याग इस विश्व के अंदर मेरे लगता बाबा की सिवाय कोई भी आत्मा नहीं कर सकती है। कोई भी गुरु भी हुए, साधु संत हुए, लेकिन इतना त्याग, इतनी नष्टमय स्थिति बाबा की सिवाय कोई नहीं कर सकता है। जो विश्व की नंबर वन आत्मा ब्रह्मा बाबा, वो हम सबके लिए कितने एग्जाम्पल हैं। हमारे लिए पुरुषार्थ करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे सामने बाबा, मम्मा और दीदी दादियां एग्जाम्पल हैं। उन्होंने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया, कितना हमारे सामने उनका जीवन एक सैंपल सिंपल है, जो हम देख करके सहज ही आगे बढ़ सकते हैं। कितना ही ये संगम युग हमें सहज हर बात को, हर परिस्थिति को पार कराता है। हम बाबा के विशेष बच्चे हैं, बाबा ने हमें चुन करके अपने अलग एक पॉट में रखा है। हमारी बाबा कितनी पालना कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली आत्मे भगवान की नजर के अंदर हम पल रहे हैं, भगवान हमें पाल रहा है, हमारी पालना कर रहा है। पालना कोई तन की नहीं होती है, आत्मा की पालना वो कोई नहीं कर सकता है, जो बाबा हम बच्चों की करता है। हम कितने लकी स्टार हैं, इस ब्राह्मण इतने ऊंच परिवार के हम सभी बाबा के हर एक अपने को ये समझे मैं लकी स्टार हूँ, कितने ऊंच परिवार से, कितने ऊंच कुल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। भगवान जिसकी पालना करता हो, जिसकी जिसके ऊपर भगवान की नजर हो, वो कितना महान है। अपने आप को कभी भी कमजोर या कभी भी हीन भावना ना आए। कई बार ऐसी कोई जीवन के अंदर कमियां कमजोरी जीवन में होती है, हीन भावना आ जाती है। बाबा कहते हीन भावना कभी ना आए, कभी हीन भावना भी नहीं आई और कभी अभिमान भी ना आई। कोई भी अभिमान आने से भी क्या होता है, अभिमान आने से भी हमें जो अभिमान में आता है वो अपमान की फीलिंग भी जल्दी कर लेता है, उसको अपमान की फीलिंग भी जल्दी आती है। जो मान अपमान में आता रहता है वो अपनी स्थिति नहीं बना सकता है। जो मान अपमान से परे रह करके अपने अपने सम्मान में रहता है वही अपनी स्थिति एक रस बना सकता है। क्योंकि हम विश्व में पाठधारी हैं, हर आत्मा का पाठ अलग अलग है, तो उसमें कभी मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। अगर हम बातों को चिंतन करते रहेंगे, छोटी छोटी बातों में जाते रहेंगे, मेरे को मान क्यों नहीं मिला, मुझे पूछा क्यों नहीं गया, मेरे को चांस क्यों नहीं दिया, ये छोटी छोटी बातें भी हमारे एक रस स्थिति को बिगाड़ती हैं। एक रस स्थिति इससे नहीं बन पाती है। एक रस स्थिति बनाने के लिए हमें अपनी एक तो नेचर इजी बनानी है, मान अपमान से दूर रहना है, क्योंकि मान अपमान तो मिलता ही रहता है, लेकिन हमें मान कौन दे रहा है। देखो बाबा ने मुझे इतना मान दिया, स्वयं भगवान ने मान दिया, उसने मेरे को क्या से क्या बना दिया, हम कहाँ थे। बाबा ने हमें इस कीचड़ की दुनिया से निकाल के अपनी नजरों में ले आया है, अपनी गोदी में बिठा करके बाबा हमारा श्रृंगार कर रहा है। कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। अगर किसी आत्मा ने अपमान भी किया तो क्या हुआ, वो भी मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब होगा, वो चुप तो हुआ। बेटा सो बेटा, बीते हुए याद को चित्त में भी ना लाएं, क्योंकि जो बीत जाता है वो 5000 वर्ष के बाद आता है। बाबा हम बच्चों को इतनी शिक्षाएं दे रहा है, कोई कारण नहीं बनता कि हम खुश न रहें। कोई ऐसी इतना बाबा ने ज्ञान का राज बता दिया है कि हम अपने आप को हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर समस्या में अपने आप को खुश रख सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आए उसमें कोई पार करना मुश्किल नहीं है, जब हम ज्ञान के राज को समझ जाते हैं। जो राज को समझ जाता है वो कभी किसी से नाराज नहीं होता है। जो नाराज नहीं होता है वही अपने आप को आगे बढ़ा लेता है। अपने आप को आगे बढ़ाना, अपनी स्थिति को एक रस रखना, अचल अडोल बनाना, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। जिसकी स्थिति अच्छी है, हर परिस्थिति के अंदर जो अचल अडोल है, कोई भी परिस्थिति आए अपने आप को जो अचल रख सकता है वही आगे बढ़ सकता है। और हमारी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रहे, चाहे मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करता है, अगर मेरी शुभ भावना है उसके अंदर एक बार भी कोई नेगेटिव थॉट ना आए। कोई व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कार वश होकर के मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा चिंतन जो है श्रीमत अनुसार चलता रहे, उसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया, या मेरी गलती नहीं थी तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं आई तो ही मेरी शुभ भावना उस आत्मा को लगेगी। शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा तक पहुंचेगी। एक दिन आएगा कि वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि हमारे थॉट पॉजिटिव भी चलते हैं, बीच बीच में नेगेटिव भी चल जाते हैं, जो उस आत्मा तक पहुंचने नहीं देते हैं। निरंतर किसी भी आत्मा के प्रति, मेरे अपने जीवन के अनुभव हैं, निरंतर किसी आत्मा के प्रति आप शुभ भावना रखते रहेंगे तो आपके शुभ भावना के परंकंपन उस आत्मा तक जरूर पहुंचेंगे। बोल करके किसी को नहीं बदला जा सकता है, किसी को समझा के नहीं बदला जा सकता है, अपने शुभ संकल्पों के द्वारा किसी भी आत्मा को बदला जा सकता है, मेरे अपने जीवन के अनुभव हैं। और अपने आप को हम समझाएं, कोई हमें समझाता है तो हो सकता है उसका इतना असर ना हो, लेकिन ज्ञान का मन चिंतन करके कोई भी कमी कमजोरी है, अपना टीचर खुद बन करके अपने आप को अपने आप ही शिक्षा दें। बाबा तो टीचर हमारा है ही, वो हमें शिक्षा दे ही रहा है, वो बाबा की शिक्षाओं को लेकर के हम अपने आप का टीचर बने। जब तक किसी बात के लिए हम अपने आप का टीचर नहीं बनेंगे तो हम अपनी कमी कमजोरी को निकाल नहीं सकते हैं। दूसरे के समझाने का थोड़े टाइम असर हो सकता है, या मेरे अंदर ये संकल्प भी आ सकते हैं, अपना अपमान भी फील कर सकते हैं कि मेरे अंदर ये कमी नहीं है, मुझे क्यों कहा गया, समझाया गया, अपमान में आ सकते हैं। लेकिन जब अपने आप को समझाएंगे, आप अंदर से रियलाइज करेंगे, अपना टीचर आप बनेंगे, अपने आप को अंदर से रियलाइज करेंगे, तो अंदर से जो कमी है वो सहज ही और स्वतः ही निकल जाएगी और आप अपने आप को बहुत ही अंदर से खुश महसूस करेंगे। क्योंकि जब कोई चीज को हम धारण कर लेते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की शक्ति और बढ़ जाती है। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, पहले उसको बड़ा मुश्किल से भेजा जाता है, कोई लालच दे करके, कॉफी का, किसी खिलौने का। जैसे उसको वो स्कूल में जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसको दो चार अक्षर आने लग जाते हैं तो उसका हौसला बढ़ने लगता है। फिर अगर उसको कोई छुट्टी भी पड़ती है तो कहता है मैंने स्कूल जाना है, क्योंकि एक बार उसको थोड़ा सा ग्रहण कर लिया तो उसका हौसला बढ़ जाता है। फिर वो स्कूल जाने के लिए उसको कोई लालच देने की जरूरत नहीं है, छुट्टी वाले दिन भी वो याद करेगा कि मुझे स्कूल जाना है। इसी तरह से ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप दे देते हैं, कुछ एक बातों को हम हिम्मत करके अपने अंदर दृढ़ता करके प्रैक्टिकल रूप ज्ञान को दे देते हैं, अपने जीवन के अंदर ले आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी और आगे बढ़ने की शक्ति बढ़ती जाती है और हमें पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। अंदर से आता है कि मुझे इससे कितना आनंद मिला, इस परिस्थिति को मैंने पार किया तो मेरे की इतनी खुशी बढ़ी, मेरे अंदर कितना एक हौसला बढ़ा। तो और आगे कोई परिस्थिति आती है तो वहां पर भी हम समाने की शक्ति, सहन शक्ति को धारण करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बार थोड़ा अपने अंदर हर बात में परिस्थिति में ज्ञान का मनन चिंतन जरूरी है, योग में मदद करता है, लेकिन योग के साथ साथ ज्ञान का मनन चिंतन भी हमें बहुत मदद करता है आगे बढ़ाने के लिए। तो हम सदा बाबा को साथी बना करके, बाबा मेरे साथ है, एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरी किसी में बुद्धि ना जाए, किसी व्यक्ति में, वैभव में, वस्तु में, तो हम धीरे धीरे इन बातों का चिंतन करते हुए एक बाबा में अपनी बुद्धि को लगाते हुए अपनी स्थिति एक रस बढ़ाते हुए हम कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। और अपने आप को लगता है हम बाबा के कार्य में मददगार हैं, कार्य में मददगार, बाबा की शिक्षाओं को धारण करना, अपनी स्थिति को एक रस बनाना, ये एक बहुत बड़ा बाबा को मदद है। मदद कोई स्थूल चीज की नहीं होती है, सिर्फ तन मन धन की नहीं है। बाबा की श्रीमत को धारण करना, बाबा के अनुसार चलना या के फॉलो फादर करना, ये बहुत बड़ी मदद है इस यज्ञ के अंदर। अपने आप को एक दूसरों के सामने एग्जाम्पल तैयार करना, क्यों अपने आप को बाबा की श्रीमत अनुसार चलाना, दूसरों के सामने अपने को एग्जाम्पल बनाना, जो हमें देख करके अनेकों को आगे बढ़ने की प्रेरणाएं मिले, ये बाबा के कार्य में बहुत बड़ी मदद है। ओम शांति।